नमस्कार, ब्रह्म कुमारी इसकी फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव और सोशल मीडिया हैंडल्स पर यह हमारी विशेष प्रस्तुति है बी द चेंज सीरीज। पिछले कई दिनों से ब्रह्म कुमारी इसकी कोशिश रही है कि जो बदलाव का वक्त चल रहा है उस दौर में हम आपकी मददगार बने। ऐसा नहीं है कि आपको मदद की जरूरत है, मगर अगर आपको मदद की जरूरत पड़ती है किसी चीज में तो आप हमेशा हमारी तरफ मदद का हाथ आगे बढ़ा सकते हैं। और इसलिए ये हमारा आउटरीच रहा है कि इस बदलाव के समय में बहुत सारे लोगों को जो मुश्किलें फेस करनी पड़ी हैं, उस मुश्किल के दौर में हम थोड़ा स्पिरिचुअल विजडम, इमोशनल सपोर्ट जहां तक हम ऑफर कर सकते हैं वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें आप सब लोग बेझिझक अपना दिल खोलकर अपने दिल के सवाल पूछ रहे हैं और इस बदलाव के दौर में हमें अपना साथी बना रहे हैं। तो आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हर दिन की तरह ब्रह्म कुमारी इसके वरिष्ठ राजयोगी भाई बहने हमारे साथ जुड़ते हैं और वो हमारे स्पिरिचुअल रिसोर्स के रूप में हमें गाइडेंस ऑफर करते हैं, इस बदलाव की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हैं। और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ ब्रह्म कुमारी प्रवीणा दीदी जी हैं। प्रवीणा दीदी जी पिछले अनेकों दशकों से ब्रह्म कुमारी इसके साथ जुड़ी हैं और ब्रह्म कुमारी इसकी सेवाओं को अग्रसर करने में उनका योगदान रहा है। भारत और देश विदेशों में भी अनेकों जगह उन्होंने यात्राएं की हैं और इस अध्यात्म की अलख को लाखों तक पहुंचाने की कोशिश की है। आज वो हमारे मास्टर ऑफ मेडिटेशन हैं और हमारे सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल विजडम हैं। दीदी जी, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
थैंक यू
दीदी। पहले तो ये जो बदलाव का दौर आया है, हम में से बहुत सारे लोग इसके लिए अनप्रिपेयर्ड थे, मोस्ट ऑफ अस वर कॉट ऑफ गार्ड। और जब ऐसा होता है तो हम में से बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, हम तो किसी भी चीज को झेल लेंगे। और व्हेन वी वर कॉट ऑफ गार्ड उस टाइम पे हमें लगता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या ये सोचना सहज है कि हमारे साथ कुछ गड़बड़ है या फिर परिस्थिति ऐसी आई है इसलिए बहुतों के साथ ऐसा हो रहा है?
वास्तव में परिस्थिति तो आनी ही है, हम हर एक जानते हैं, लेकिन परिस्थिति के लिए तैयार होना बहुत जरूरी होती है। जैसे बरसात आने वाली होती है तो हम पहले से तैयारी करते हैं, छाता तैयार करते हैं, रेन को तैयार करते हैं, तो ऐसे ही परिस्थिति का आना अचानक ही होता है, तो उसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए ताकि ऐसी कोई भी बात आती है हमारे जीवन के अंदर तो हम नाउमीद न हो जाए और हम बहुत अच्छी तरह से वो परिस्थिति का सामना कर सके।
जी, ये जो बदलाव का दौर बीता है, हमारे बहुत सारे दोस्त ये भी जानना चाहेंगे कि इतना मुश्किल तो किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए था, बट जब हमने देखा कि सारे ही लोग मुश्किलों से गुजर रहे हैं, सारी दुनिया एक साथ ऐसा हो रहा है, तो अचानक मन में प्रश्न उठता है कि इसको कैसे समझा जाए, इसकी पीछे की अंडरस्टैंडिंग क्या होगी। तो स्पिरिचुअली आप किस अंडरस्टैंडिंग से इस चीज को देखते हैं?
क्योंकि आध्यात्मिकता में हमारे पास ये ताकत है कि परिस्थिति को सामना करना, हमारे पास वो आध्यात्मिक पावर है, शक्ति है, जिसको हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं। और ये बात जो हुई है वो सारे विश्व के अंदर हुई है, चाहे वो कोरोना की बात हम लेते हैं, लेकिन जो आया है उसको स्वीकार करना ही हमारी समझदारी है। ऐसे नहीं कहे कि ये नहीं होता था, नहीं आता था, क्योंकि जो आ ही गया है तो उसके लिए हमें अपने आप को फिर से तैयार करना बहुत जरूरी होता है। और आध्यात्मिकता से हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से अपने आप को संभाल पाते हैं, क्योंकि जीवन के अंदर ऐसी कई बातें आती हैं, लेकिन वो बातों के अंदर यदि हम अपने आप को मोटिवेट करते चले जाएं और रोज हमारे जीवन में नई नई बातों की ऊर्जा को जागृत करते रहें, तो मैं समझती हूँ कि ऐसी कोई भी बात आती है तो हम आध्यात्मिकता की शक्ति से उसको सहज ही पार कर सकते हैं।
जी, हमारे जो दोस्त प्रोग्राम में जुड़े हैं, अगर वो सवाल पूछना चाहते हैं, अगर कोई भी बात आप शेयर करना चाहते हैं, प्रश्न नहीं है या फिर कोई ख्याल है जो आप सिर्फ हमें हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में यानी फेसबुक पर और यूट्यूब पर दोनों ही जगह आप यहाँ कमेंट्स में देखेंगे, तो उनमें से कमेंट्स को हम यहाँ स्क्रीन पर दिखाएंगे और साथ साथ कुछ प्रश्नों को मैं पढ़कर दीदी जी से पूछूंगा और उसके लिए हम स्पिरिचुअल विजडम का गाइडेंस भी लेंगे। और कुछ दोस्त जो ऐसे सवाल पूछना चाहते हैं जहां पर आप अपना नाम नहीं बताना चाहते, आपका प्रश्न प्राइवेट रखना चाहते हैं, ऐसी कोई बात पूछना चाहते हैं, तो भी आप कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में बेफिक्र रह सकते हैं और ऐसे सवाल आप हमें ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। सोशल मीडिया @brahmakumaris.com पर आप ईमेल करें तो वहां से हम इन प्रश्नों को जरूर लेंगे और आपके नाम प्राइवेट रखा जाएगा। पहला प्रश्न हमारे साथ है और मैं इस प्रश्न को लेना चाहता हूं। YouTube से हमारे एक दोस्त जुड़े हैं और वो प्रश्न पूछते हैं, मुझे बार बार नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे मैं कैसे कंट्रोल करूं उनको, नेगेटिव थॉट्स से मैं बहुत घबरा जाती हूं और हेल्थ भी खराब हो जाती है, इसके बारे में गाइडेंस मांगते हैं।
हमारे जीवन के अंदर सोच बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि जैसा सोच हम अपने जीवन में करते हैं वैसा ही हम अपनी जिंदगी को बनाते हैं। जैसे धरती में जो बीज बोना होता है वो बीज को हम देख करके, क्वालिटी देख करके हम धरती में बोते हैं, ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर हमारे संकल्प बहुत बड़ी ताकत हैं। यही कहो कि ये बीज है और जैसा बीज बोते हैं वैसा फल हमें मिलता है। यदि मैं नेगेटिव संकल्पों के बीज को बोती हूँ तो उस पर जो फल लगेगा वो फल कैसा होगा। आज हम हर एक चाहते हैं कि हम मीठा फल, ताकत वाला फल अपने को दें ताकि हमारा जीवन बहुत अच्छा चले। लेकिन यदि मैं नेगेटिव संकल्पों के बीज को बोती हूँ तो उसी उसके आधार से जो प्राप्ति होती है वो दुख और अशांति ही होती है और उसके आधार से हम बहुत दुखी हो जाते हैं। तो इससे तो अच्छा है कि हम अपने संकल्प की पैटर्न को बदली करें। और यदि हम बदली करना नहीं आता है तो ऐसी कोई किताब पढ़े जिस किताब के आधार से हम अपने संकल्प के पैटर्न को और अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि संकल्प एक बीज है और बीज को जब हम बार बार पानी देते हैं तो वो बीज एक बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। तो इससे तो अच्छा है कि हम सोच समझ करके संकल्प के बीज को बोए, वो ही समझदारी है।
दीदी, ये जो बात आप अभी कह रहे थे नेगेटिव थॉट्स के बारे में कि हमें सोच समझ के इसके बारे में विचार करना चाहिए, उसी चीज को हमें बोना चाहिए जिसके बारे में हमें फ्रूट्स के बारे में ख्याल रहे। इससे मिलता जुलता एक प्रश्न है जो अरुण कुमार हमारे साथ पूछते हैं। उनका प्रश्न है, ये यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण का प्रश्न ये है कि क्या कभी ऐसा होता है कि हम नेगेटिव सोच रहे हो और हमें पता भी नहीं पड़े कि हम नेगेटिव सोच रहे हैं।
सोच रहे हैं नेगेटिव और पता न चले, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ये एक पहचान होती है कि पॉजिटिव संकल्प जो चलते हैं उसकी गति बहुत स्लो होती है और नेगेटिव संकल्प की जो गति है वो बहुत फास्ट होती है। तो यदि मेरे संकल्प बहुत फास्ट चल रहे हैं और उस संकल्प के आधार से मुझे कौन सी फीलिंग्स आ रही है, यदि मैं नेगेटिव सोच रही हूँ तो उसकी जो फीलिंग्स होती है वो फीलिंग्स भी नेगेटिव ही होगी। तो जिस फीलिंग्स से मुझे क्या मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होता है कि हमें पता ना चले, पता जरूर चलता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम इग्नोर करते हैं अपने विचारों को भी। लेकिन उसके बाद जब उसकी रिजल्ट आती है तब पता चलता है कि हमने कौन सी बातें सोच ली। तो इसीलिए अच्छा है कि ऐसे कभी संकल्प आते हैं तो ब्रेक लगाना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जब गाड़ी बहुत फास्ट जाती है और फिर ब्रेक लगाते हैं तो और एक्सीडेंट हो जाता है। इससे तो अच्छा है कि हम अपने संकल्प की स्पीड को मेंटेन रखें और जिससे प्राप्ति का जो अनुभव होता है उससे हम अपने आप को समझ सकते हैं।
जी बहुत ही सुंदर बात आपने कही दीदी कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम नहीं समझ पाए। अगर आपको किसी कारण ये समझ नहीं है कि नेगेटिव विचार कैसे होते हैं या कैसे उसको पहचान करें, तो आपने उसकी पहचान भी बताई कि नेगेटिव विचार बहुत फास्ट चलते हैं और अगर हम पॉजिटिव होते हैं तो बहुत ही स्लो विचार चलते हैं। और मैं पिछले कई दिनों से सुन रहा हूँ, हमारे कई मास्टर्स ने यही चीज कहा कि मेडिटेशन का एक डेफिनेशन ये भी है कि आपके मन के विचार, मन के संकल्प जो है वो धीमे हो जाएंगे, उसकी पेस कम हो जाएगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। और शायद यही पॉजिटिव चीजों के साथ होता है, जो भी संसार में अच्छी चीजें देखने को मिलती हैं वो सब धीरे धीरे होती हैं, स्लो नेचर का भी स्पीड बहुत स्लो है। बहुत ही अच्छी बात आपने कही। एक और प्रश्न है जो सुश्री दास पूछते हैं। सुश्री का प्रश्न है, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स, टू गेट रिजल्ट्स ऑफ पॉजिटिव संकल्प शक्ति। अगर हम पॉजिटिव थॉट्स करते हैं, पॉजिटिव संकल्प करते हैं, तो उसका रिजल्ट मिलने में हमें कितना टाइम लगता है, ऐसा सुश्री पूछते हैं।
मेरा तो ये मानना है कि जब हम पॉजिटिव संकल्प करते हैं तो इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, और वो इंस्टेंट रिजल्ट है खुशी। और खुशी एक ऐसा एहसास है कि हर एक चाहता है कि हमारे जीवन में खुशी हो। तो जब भी हम संकल्प करते हैं तो इंस्टेंट रिजल्ट तो खुशी है, लेकिन लॉन्ग टर्म भी अगर हम अपने संकल्पों को पॉजिटिव बनाने की पैटर्न बना लेते हैं तो हमारे जीवन को हम बहुत अच्छी तरह से जी सकते हैं।
तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुरंत ही रिजल्ट दे, बट करते करते उस चीज को पता चल जाता है कि हम ये चीज कर रहे हैं और इसका असर हो रहा है लाइफ में। ठीक है, एक और प्रश्न है, मैं समझता हूँ एक कमेंट है जो हेमा हमारे साथ जुड़े हैं यूट्यूब से, वो कहते हैं, ओम शांति, ऑलवेज स्टॉप ऑब्जर्व एंड स्टीर योर थॉट्स, कीप देम एलिवेटेड एंड डिवाइन। थैंक यू हेमा, प्रोग्राम को देख रहे हैं पिछले कई दिनों से और इसका बेनिफिट ले रहे हैं और बहुतों के साथ अपने पॉजिटिव थॉट्स शेयर कर रहे हैं। एक और प्रश्न है, संजय नाथ हमारे साथ हैं जो यूट्यूब से जुड़े हैं, वो कहते हैं, मेरा अपनों के साथ रोज अच्छा बिहेवियर, मैं अपनों के साथ रोज अच्छा बिहेवियर करती हूँ, परंतु वे हमेशा रोज गलत व्यवहार करते हैं, वो गलत बिहेवियर करते हैं मेरे साथ, क्या करूं, पिछले 20 साल से सह रहा हूं, ऐसा ही कहते हैं।
वो अच्छा व्यवहार करते हैं और सामने वाले अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, ऐसा ना
जी? वो अच्छा व्यवहार कर रहे हैं बट सामने वाला उनको परेशान कर रहे हैं उनके बैड बिहेवियर से। 20 ईयर्स से भी ज्यादा टाइम से इनको ऐसा लग रहा है कि इनको सहन करना पड़ रहा है।
मैं एक बात कहूंगी कि जिसके पास जो होता है वो दूसरों को वही देता है। अगर किसके जीवन में दुख ही है तो वो दूसरों को दुख ही देगा, वो सुख नहीं दे सकता है। जैसे कि हम सब्जी मार्केट में जाते हैं और वो सब्जी मार्केट में जाकर के हम कहें कि भाई हमें फूल दे दो, तो वो कहे कि बेन मैं तो सब्जी वाला हूँ, आप सब्जी ले जाइए ना, फूल मेरे पास नहीं होता है। तो ऐसे ही जिसके पास जो होता है वो दूसरों को वो ही दे सकता है, तो हम उनसे और एक्सपेक्ट न करें, क्योंकि दुखी हम तब होते हैं जब हम कुछ एक्सपेक्टेशन हमारी बढ़ा देते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए ताकि हम दुखी न होवे, क्योंकि हम उसके स्वभाव संस्कार को समझ लेते हैं। और कई बार क्या होता है कि आप समझते हैं कि आपको बहुत सहन करना पड़ता है, तो सहन करना एक ताकत है, एक शक्ति है। जैसे एक मूर्तिकार एक पत्थर को छेनी और हथौड़ी का घा कर करके वो मूर्ति बनाता है, और वो पत्थर यदि टूट जाता है तो वो मूर्ति मूर्ति नहीं बनती है। तो इसी प्रकार हमें जो भी व्यक्ति की तरफ से ऐसी बातें आती हैं तो वो हमें मूर्ति बना रहे हैं। मैं तो यही समझती हूँ कि सहन करना एक बहुत बड़ी ताकत है जो हमें बहुत ऊंचाई पर ले जाते हैं। और एक समय आता है कि हम प्रूफ बन जाते हैं तो हमें किसी भी बात की इफेक्ट नहीं होती है, क्योंकि हमने सहन करके अपने आप को प्रूफ बना लिया है। तो बेन, आप जो भी सहन कर रहे हो, ये नहीं समझो कि आप 20 साल से सहन कर रहे हो, लेकिन आपके जीवन में आपको बहुत ऊंचाई की ओर ले जाने के लिए ये बातें आई हैं।
दीदी, एक और प्रश्न है, मैं समझता हूँ ये थोड़ा विस्तार वाला उत्तर आप दे सकते हैं इसके लिए
जी।
और ये हमारे दोस्त हैं रिगजेन यांगडोल, और ये हमारे साथ YouTube पे जुड़े हैं। ये कहते हैं, इट इज सेड दैट व्हाटएवर इंसिडेंट और इवेंट टेक्स प्लेस इन आवर लाइफ इज बिकॉज ऑफ आवर प्रीवियस बर्थ कर्मा। ये अक्सर ऐसा माना जाता है भारत में, तो ये मान्यता है कि लोग कर्म फिलोसफी पर विश्वास करते हैं कि अगर कोई चीज जो हमारी समझ में नहीं आ रही है फिर भी वो हमारी लाइफ में हो रहा है, तो हम ये कहते हैं ये हमारे कोई पुराने हिसाब किताब होंगे, मेरे कोई कर्म होंगे जिसके लिए मुझे ये करना पड़ रहा है या भुगतना पड़ रहा है या ऐसे सिचुएशंस लाइफ में आए हैं। तो वो कहते हैं कि इन चीजों को हम कैसे समझें, क्योंकि उस चीज को तो मैंने तो देखा नहीं है कि पास्ट लाइफ में कब हुआ था, क्या हुआ था। और इसके साथ साथ ये थोड़ा सा और ऐड करते हैं और कहते हैं कि अगर सब कुछ पास्ट से ही आ रहा है तो पुराने जन्म में भी कुछ अच्छे संस्कार रहे होंगे, कुछ अच्छी चीजें रही होंगी, वो हमारी प्रेजेंट लाइफ में क्यों नहीं आते, उनको डील करने की ताकत प्रेजेंट लाइफ में क्यों नहीं आती। मैं सोचता हूँ ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, आप थोड़ा समय लेके इसे समझाएं।
पूर्व जन्म में हम जो भी कर्म करके आए हैं, और ये तो निश्चित है कि कर्म हमारे साथ साथ चलते हैं, या तो हमारे संस्कार के रूप में कहो, या तो जो हमारे आसपास हमारे संबंध में जो आए हैं वो भी हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही हम ऐसी आत्माओं के साथ अकाउंट्स जो होता है वो चुकतू करने के लिए आए हैं। क्योंकि ऐसे तो हम कोई भी परिवार में जा सकते थे, लेकिन यही परिवार में मैंने क्यों जन्म लिया। जरूर है कि कोई भी जन्म का हमारा पास्ट का हिसाब किताब रहा है, जो हम इस जन्म में वो हमारे माँ बाप बनकर के आए हैं या हमारे भाई बहन बनकर के आए हैं। तो कर्म का अकाउंट्स जब क्लियर होता है तो हल्कापन अनुभव होता है। क्योंकि जैसे आपने किसी से 1 लाख रुपया बोरो किया हो और वो घड़ी घड़ी आपके पास आता है मांगने के लिए, लेकिन आपके पास है नहीं तो आप नहीं देंगे, तो आप कितना भारी महसूस करेंगे। लेकिन जब आपके पास पैसा आया और आपने उसको चुकता कर दिया, तो उस दिन आपको चैन की नींद आएगी कि अच्छा हुआ मैंने इसका हिसाब क्लियर कर दिया। तो कर्म भी हमारे कुछ ऐसे ही हैं कि हम एक दूसरे से कैसे व्यवहार में आते हैं, कैसे हम बिहेव करते हैं दूसरे के साथ, इससे पता चलता है कि पूर्व जन्म का हमारा कोई कर्म का अकाउंट था। अगर मैं दुखी हो जाती हूँ तो ये जरूर समझना चाहिए कि मैंने उस आत्मा को पूर्व जन्म में कभी दुख जरूर दिया होगा, और इस समय वो आत्मा चुकता कर रही है मेरे साथ। तो हम भी यदि दुखी होने के बजाय खुशी खुशी से चुकतू करें, तो मैं समझती हूँ कि हल्कापन की अनुभूति जरूर होंगी। और इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं और उनसे हमें पता चलता है कि हम इस जन्म में जो अच्छा काम करते हैं तो उसका रिजल्ट भी हमें कई बार इस जन्म में भी मिल जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि जो कोई बीज हम बोते हैं, तो कोई बीज होता है जो इंस्टेंट फ्रूट देता है, कोई बीज होता है जो सीजनल फ्रूट देता है, और कोई बीज होता है जो बोया भारत में और उसका फल मिला हमें जर्मनी में। तो आप सोचो ऐसा कैसे हुआ, बीज तो मैंने यहाँ बोया था और वो बीज उड़ करके कहाँ गया, कहीं भी जाता है। हरिकेन आया तो वो बीज उड़ करके कहीं भी चला जाता है, बाढ़ आई बीज कहीं भी यहाँ से चला जाता है। तो ऐसे भी कर्म भी हैं कि कर्म का बीज बोया हमने पिछले जन्म में और इस जन्म में हमें फल मिलता है। जैसे आम का बीज बोया किसने और आम खा कौन रहे हैं, है ना। 20 साल पहले किसी ने आम का बीज बोया था और इसका फल आज हम खा रहे हैं, तो 20 साल के बाद उसका रिजल्ट मिलता है। तो कर्म भी ऐसा है कि बहुत सालों पहले हमने बीज बोया था और हम भूल गए कि हमने ये बीज बोया था, और 20 साल के बाद जब अचानक हमें उसका फल मिलता है, अगर फल अच्छा है तो खुशी मिलती है, लेकिन फल अच्छा नहीं है, कड़वा फल है, तो कड़वा फल से क्या मिलेगा, दुख और अशांति हमारे जीवन में आएंगी। तो समझदारी तो वो ही है कि हम कर्म को समझें और जो कर्म का अकाउंट्स हमारे सामने आता है वो अकाउंट्स को खुशी खुशी से चुकता करें और हल्कापन की फीलिंग्स के साथ उसको चुकता करें, तो हम कैरी ऑन नहीं करेंगे आगे जन्म के लिए, क्योंकि इसी जन्म में हम बहुत अच्छे कर्म करें तब जाकर के हम दूसरे जन्म में उसका बहुत अच्छा फल मिलता है। मुझे कहानी याद आ रही है कि एक बच्चा था, वो बच्चे को बहुत गुस्सा आता था, तो जब भी बच्चा कभी गुस्सा करता था तो उसका फादर एक नेल दीवार के अंदर लगा देता था। तो बच्चे को ही कहता था उसका फादर कि एक नेल जाकर के दीवार में लगा दो, और ऐसे करते करते सारी दीवार भर गई। तो एक दिन वो बच्चा कहता है कि पापा ये दीवार इतनी भर गई है, अभी क्या करना है उसको। तो उसके पापा कहता है कि आप एक अच्छा काम करो, किसी को सुख देने का काम करो और एक नेल निकालो। तो उसने गुस्से को माइनस करता गया और अच्छा कर्म करते करते एक नेल निकालता गया, और फिर सारी नेल निकल गई तो बच्चा बहुत खुश हो गया। फिर उसके फादर ने उसको दिखाया कि देख बेटा, सारी नेल तो निकल गई लेकिन निशान फिर भी रह गया। तो हम अपनी इम्प्रेशन, जो भी कर्म हम करते हैं उसकी इम्प्रेशन जरूर छोड़ते हैं। यदि आज मैंने गुस्सा किया, सामने वाली व्यक्ति 6 मास तक उसकी इम्प्रेशन को कैरी करते हुए चलेगी। हम कितना भी अच्छा काम करेंगे लेकिन एक इम्प्रेशन हमारी बन गई कि ये व्यक्ति में बहुत गुस्सा है, उसको निकालने में बहुत मेहनत लगती है। इसीलिए ये जन्म के अंदर हमें ये समझ जरूर आई है कि कर्म हम ऐसा करें ताकि सामने वाले को हम सुख दे सके। दुख देना बहुत आसान है, लेकिन सुख देना, वो कर्म जो अच्छा फल देवे, वो कर्म हम करते चले जाएं तो भविष्य में भी हमें अच्छा ही फल मिलेगा, ये गारंटी है।
बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी। मैं समझता हूँ वो दोस्त जो कर्मा फिलोसफी पे विश्वास भी नहीं करते या किसी की धार्मिक मान्यता के अनुसार भी कुछ लोग कर्मों को नहीं मानते, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छी चीज आपने बताई कि कोई भी चीज हम करते हैं उसका इम्प्रेशन जरूर पड़ता है। अगर हम अच्छा करेंगे तो फिर अच्छा इम्प्रेशन तो बना ही रहता है। और आपने जो एग्जाम्पल दिया वो अपने आप में बहुत सारी चीजें समझाता है कि हमें कितना कॉन्शियस होकर करना चाहिए। भले आप अगले और पिछले जन्म के बारे में सोचें या विश्वास करें या नहीं करें, बट आज आपके पास जो है वो आपके लाइफ के लिए बहुत कुछ उसका असर होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए करेंगे तो हम अपने ही लाइफ को हैप्पियर या अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ता हूँ। अंजू बाली हमारे साथ हैं और अंजू का प्रश्न है, वो फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं और अंजू प्रश्न पूछती हैं, व्हेन एवरीवन अराउंड इज नेगेटिव एंड दे मेक अप अ ग्रुप टू बॉदर यू, सो हाउ कैन वी डील विद इट। अक्सर करके ये होता है कि जब एक व्यक्ति नेगेटिव बोलता है तो हम उसे डील करने लगते हैं, बट वही व्यक्ति जब एक ग्रुप बना ले आसपास, जैसे ऑफिस में होता है लोग एक पार्टी बना लेते हैं तो वहां पर, और वो आपको बॉदर करने लगे, तो उस समय पर अपने आप को कैसे डील करना चाहिए, क्या करना चाहिए, पूछते हैं अंजू।
अंजू बहन, मैं समझ सकती हूँ कि दुनिया के अंदर इतना नेगेटिव एटमोस्फियर है कि ये चैलेंज न सिर्फ आप लेकिन बहुत लोग ये चैलेंज को पास करते होंगे, क्योंकि मैं एक पॉजिटिव हूँ और आसपास में सब नेगेटिव होते हैं, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि पॉजिटिव में पावर है। नेगेटिव एक सुपरफिशियल दिखता है ऊपर से पावरफुल, लेकिन अंदर से खोखला होता है। और आप अपने गुणों की खुशबू, विशेषताओं की खुशबू फैलाते रहो, अच्छी बातें करते रहो, उनके लिए भी आप अपने मन में अच्छे विचार ही क्रिएट करो। तो मैं समझती हूँ कि आपके वाइब्रेशंस सामने वाले को परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि जब बदबू होती है तो हम अगरबत्ती जला देते हैं और वो अगरबत्ती अपने आप अपनी खुशबू फैलाती है। तो अंजुबेन, आप भी ऐसी अगरबत्ती बनो कि आप अपने गुणों की विशेषताओं की खुशबू फैलाओ। तो मैं समझती हूँ कि एक दिन जरूर आएगा वो आपकी विशेषता के गुणों की, आपकी पॉजिटिविटी का महत्व समझेंगे।
जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी। ये जो पॉजिटिविटी के बारे में आप ये बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो इस लॉकडाउन के टाइम पे मेडिटेशन सीख रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने योगा सीखा, बहुत सारे लोग क्रिया और बहुत सारी चीजें, ऐसी पॉजिटिव चीजें सीखने की कोशिश कर रहे हैं। राजेश हमारे साथ फेसबुक पे जुड़े हैं और उनका प्रश्न भी इससे मिलता जुलता है। हाउ डू आई नो इफ माई मेडिटेशन पुरुषार्थ इज इन राइट डायरेक्शन? डू वी एक्चुअली सी शिवा एज अ लाइट ड्यूरिंग मेडिटेशन? तो ये बहुतों का प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारे लोग नए से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मेडिटेशन के साथ, तो उनको पता नहीं चल रहा है कि हाँ हम सही लाइन पे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लॉकडाउन के चलते ऑनलाइन मेडिटेशन सीखा है बहुत सारे लोगों ने, तो कैसे पता चले कि हाँ हमारा मेडिटेशन सही जा रहा है, कि हमें कुछ दिखाई देना चाहिए, क्या होना चाहिए मेडिटेशन?
मेडिटेशन जब हम करते हैं तो पहली बात हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन दिखाई देता है, और वो परिवर्तन विजिबल होता है। और मैं खुद भी महसूस करती हूँ कि मेरे स्वभाव में, मेरे संस्कार में, मेरे व्यवहार में ये परिवर्तन कैसे आ गया। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने आप को एक अलग व्यक्तित्व वाला महसूस करते हैं, हमारे विचारों की पैटर्न भी बदल जाती है। राजेश भाई, आप भी जब मेडिटेशन करो तो कुछ देखने का एम नहीं रखो, लेकिन आप कुछ बनने का एम जरूर रखो। एक पॉजिटिव पर्सन तो बन सकते हो। अगर हमारे स्वभाव में कोई ऐसी नेगेटिव बात है, गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन आना, दुखी हो जाना, ये सब बातें यदि है, तो उसको हम अपने मेडिटेशन के माध्यम से परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन हमें एक अलग व्यक्तित्व वाला बना देती है। आप इतने समय से यदि आपने हमारा ये प्रोग्राम देखा हो तो इसमें कई अच्छी अच्छी बातें आपने समझी होंगी, सुनी होगी। तो आप जरूर अपने आप को अच्छा बनाने का, ऊंचाई पर ले जाने का एक मेडिटेशन ऐसा होता है कि हम अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं। मैं मेरे घर का ही एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं स्कूल से वैकेशन में जब घर आई तो मैंने देखा कि मेरी मदर एकदम चेंज हो गई है, क्योंकि मेरी मदर बहुत ही हाइपर थे, बहुत एक्टिव थे और बहुत ही गुस्सा आता था उसको अगर कोई एक्टिव नहीं रहते थे, तो टाइम पर उठते नहीं थे। तो और मैं देखूं कि मेरी माँ एकदम परिवर्तन हो गई है, ये क्या कारण है? और मैंने ये जानने की फिर कोशिश की कि कौन सी ऐसी बात इनके जीवन में आई है जिसके माध्यम से इसके जीवन में इतना महान परिवर्तन आया। तो मैंने फिर समझा कि मेरी मम 8 मास से मेडिटेशन करती थी और वो 8 मास के अंदर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया था, अपनी बात ने मुझे भी प्रेरणा दी कि मैं भी ये मेडिटेशन जरूर सीखूं। तो अब
जी मैं अभी प्रश्न की तरफ आगे बढ़ता हूं दीदी। ये प्रश्न हमारे स्टूडेंट हैं जो पूछते हैं और इनका नाम है आशीष और यूट्यूब से ये हमारे साथ जुड़े हैं। और आशीष का प्रश्न है कि मैं एक स्टूडेंट हूं और मुझे पढ़ाई में राजयोग का प्रयोग कैसे करूं, ये पूछते हैं। हालांकि स्पिरिचुअलिटी एक अलग सब्जेक्ट है, बट आजकल बहुत सारे लोग मेडिटेशन इसलिए भी सीखते हैं कि मेडिटेशन से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, उससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, ऐसा लोग सोचते हैं। तो ये पूछते हैं कि राजयोग से मेरे पढ़ाई में मैं उसको कैसे यूज कर सकता हूँ, ये प्रश्न है आशीष।
आशीष भाई, मेडिटेशन से कॉन्सेंट्रेशन तो जरूर बढ़ता ही है और राजयोगा मेडिटेशन भी वो मेडिटेशन है कि हमें अपनी कर्मेंद्रिय का भी राजा बनाता है और भविष्य में भी राजा बनाता है। मैं तो यही कहूंगी कि राजयोग का अभ्यास से भी आपके पढ़ाई में बहुत बहुत फायदा होगा, क्योंकि आप जो भी पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन पावर होंगी तो ये पढ़ाई आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पढ़ाई के लिए थोड़ी मेहनत से आप अच्छी तरह से याद रख सकेंगे और अच्छी रिजल्ट आप ला सकेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि मेडिटेशन करते हैं तो हम अपनी पढ़ाई को निग्लेक्ट करें। लेकिन हाँ, पढ़ाई करते अगर मेडिटेशन करते हैं, राजयोगा मेडिटेशन करते हैं, तो पढ़ाई में बहुत अच्छी रिजल्ट आती है। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ब्रह्मा कुमारीज में कि जिन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ राजयोगी जीवन भी चालू रखा। क्योंकि मैं भी जब ज्ञान में आई तो 12वीं की एग्जाम पूरी करने के बाद मैं ज्ञान में आई तो कॉलेज में मुझे बहुत ही मदद मिली है राजयोगा मेडिटेशन की। तो पढ़ाई को भी बहुत अच्छी तरह से हम कर सकते हैं ये राजयोगा करके।
जी अगले प्रश्न की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ। इससे पहले मैं हमारे दोस्तों को बता दूं कि जो लोग अभी भी ज्वाइन किए हैं, अगर आप प्रोग्राम के दौरान कुछ पूछना चाहते हैं, अगर कोई बात है, कोई ख्याल है जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप बेझिझक करें। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, भले आप फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, जहां पर भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल, अपने विचार या आप सिर्फ एक शाउट आउट देना चाहते हैं तो वो भी करना वेलकम है। आप लिखें, यू कैन गिव दोज कमेंट्स हियर एंड उनमें से कुछ कमेंट्स को हम स्क्रीन पे दिखाएंगे और कुछ प्रश्नों को मैं, प्रवीणा दीदी आज हमारे साथ हैं, उनसे मैं प्रश्न के उत्तर लेने की कोशिश करूंगा। अगले प्रश्न की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ। फेसबुक से हमारे साथ रचा जुड़े हैं और रचा का प्रश्न है, वो कहते हैं हाउ कैन वी नो द वैल्यू ऑफ टाइम एंड हाउ टू स्टॉप बीइंग लेजी। अक्सर ऐसा होता है कि हम टाइम की वैल्यू नहीं समझते हैं तो हम लेजी हो जाते हैं। और ये आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि हाउ टू कंट्रोल आर टंग एंड हाउ टू फिल आवर हार्ट विथ स्ट्रेंथ। आई एम फीलिंग लो एट हार्ट एट द मोमेंट, फिल वक्त बहुत लो महसूस कर रहे हैं और वो इन सब प्रश्नों से परेशान हैं तो वो पूछ रहे हैं। 4 प्रश्न है, मैं समझता हूँ आप एक एक के बारे में बताते जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं।
आई थिंक पहला प्रश्न है टाइम का,
जी
टाइम की वैल्यू का, और दूसरा प्रश्न
लेजीनेस को कैसे स्टॉप कर सकते हैं कि हम स्टॉपिंग, और तीसरा है कि हम अपनी जुबान को कैसे कंट्रोल करें, और चौथी बात है कि हम अपने हार्ट में स्ट्रेंथ कैसे भरें।
अच्छा, टाइम की वैल्यू उससे पूछो जो 1 मिनट ट्रेन लेट पहुंचने से ट्रेन छूट जाती है, तो आपको पता चलेगा कि 1 ही मिनट की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि आपकी ट्रेन छूट गई और दूसरी ट्रेन के लिए फिर आपको, आपके पास टिकट नहीं होंगी, आपको दूसरी बुकिंग करनी पड़ेगी और वो ट्रेन में आपको सीट मिले या न मिले, कितनी सारी बातें आती है। तो 1 मिनट लेट होने से जो ट्रेन छूट जाती है, तो उनको टाइम की वैल्यू पता होती है कि कैसे हमें अपने टाइम की वैल्यू करनी चाहिए। दूसरी बात, लेजीनेस यदि हमारे जीवन में है तो लेजी व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी प्रगति नहीं कर सकता है। यदि मैं अपने जीवन में प्रगति चाहती हूं तो आलस को छोड़ना पड़ेगा। हम अपने आध्यात्मिक जीवन में ये बात को बहुत अच्छी तरह से पक्का किया है कि 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और 6th विकार है आलस, जो हमें अपनी प्रगति के पथ पर बहुत बड़ा विघ्न है। आलस, अगर मैं सारा साल आलस करती रहूंगी तो मैं एग्जाम क्या दे सकेंगी। इसीलिए आलस को जीतना बहुत जरूरी है। और तीसरी बात भाई ने कही, क्या प्रश्न था तीसरा?
तीसरा प्रश्न है
जीभ को कैसे कंट्रोल करें, राइट? मैं कहूंगी कंट्रोल करने के बजाय यदि हमारे जीवन में संयम आ जाए, क्योंकि जब बहुत अच्छी चीजें देखते हैं तो खाने का एक लालच उत्पन्न होता है। और मैं हमेशा ये बात जरूर कहती हूं कि हर कर्मेंद्रिया 2 है और एक काम करती है, लेकिन जीभ 1 है लेकिन 2 काम करती है, राइट रक्षाबेन? और वो 2 काम बहुत पावरफुल करती है। और दुनिया के अंदर भी आजकल यही मानते हैं, पहले ये मानते थे कि मन जीते जगत जीत, मैं तो कहूंगी अभी जीभ जीते जगत जीत। यदि हमारे जीवन में जीभ को हमने डिसिप्लिन सिखाया, क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, किस वातावरण में क्या बोलना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। और भोजन भी, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये शरीर हमारा एक मंदिर है और ये मंदिर की पूजा हम अपने जीवा के माध्यम से करते हैं। तो आप इसके अंदर कौन सा भोग लगाते हो वो हम अपने आप को समझ सकते हैं। और चौथा प्रश्न क्या था भाई?
वो अपने हृदय में स्ट्रेंथ कैसे भरे, अपने आप को स्ट्रांग कैसे किया जा सकता है।
मैं तो कहूंगी जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। आपने यदि सोचा कि मैं वीक हूं तो स्ट्रेंथ कभी नहीं आएंगी। और अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए रोज एक अच्छा विचार, पॉजिटिव विचार सुबह उठते ही करो कि मैं पावरफुल आत्मा हूं, मैं पॉजिटिव आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली हूं। तो जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अगर अपने आप को शक्तिशाली बनाना है तो अपने विचारों को शक्तिशाली जरूर बनाइए। तो बहुत सहज विधि है।
आप ये जो बात कह रहे थे दीदी कि सुबह उठते ही हमें ये करना चाहिए, मैं इस प्रश्न को थोड़ा आगे ले रहा हूँ। सुबह ही ये करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमें लगता है कि जैसे हम में से बहुत सारे लोग हैं जो सुबह उठते हैं, उठते ही हमारी पहली नजर घड़ी पे जाती है और हम देखते हैं कि चलो अच्छा अभी टाइम है तो थोड़ा और सो लेते हैं, ऐसा सोचते हैं। अगर टाइम बीत गया है तो हमें जल्दीबाजी की याद आ जाती है, अरे लेट हो गया। तो ये जो फर्स्ट चीज आप कह रहे हैं कि सुबह उठते ही ये करना चाहिए, इसका महत्व क्यों है?
वैसे मैं ये प्रैक्टिस करती हूं सुबह के बजाय रात को अपने मन को प्रोग्राम देती हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमारी सुबह रात से शुरू होती है। क्योंकि रात में आप जो संकल्प के साथ सोएंगे सुबह वो ही संकल्प से आप उठेंगे। अगर आप टेलीविजन देखते देखते सो गए तो उठते आपको कौन सा विचार आएगा? इसलिए अच्छा है कि आप मेडिटेशन करते करते सो जाओ तो सुबह आप अपने मन को पीसफुल अनुभव करेंगे। और सुबह इसीलिए महत्व का है कि हमारे दिन की शुरुआत हमारे उठने से होती है। अगर जिनकी सुबह अच्छी, उसका सारा दिन अच्छा, ऐसा हम मानते हैं, तो हम घड़ी देख करके ना उठें, बल्कि 15 मिनट पहले उठें। जब आप उठते हैं, जो आपने टाइम सेट किया है, यदि 15 मिनट पहले उठेंगे तो आप काम रहेंगे, पीसफुल रहेंगे, और वो पीसफुल माइंड कुछ अच्छा सोचेगा। तो बेटर है कि हम अपने 15 मिनट जल्दी उठने का एम रखें। और मेरा तो ये मानना है कि हमारी एक नेचुरल घड़ी यहाँ भी है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। आपने यदि अलार्म सेट किया है 6 बजे उठने का, तो आप 6 बजने में 1 मिनट पहले आप उठ जाएंगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड को आपने सोने से पहले प्रोग्राम दिया था, तो ये प्रोग्राम के अनुसार वो उठ जाता है। लेकिन हम फिर इंतजार करेंगे अलार्म बजे और फिर उठें, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए 15 मिनट जल्दी उठने का एम रखें, ताकि पीसफुल माइंड कुछ अच्छा विचार क्रिएट करेगा।
बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी, कि आपने जो बात कही कि दिन की शुरुआत रात से होती है, और रात को अगर हम सही प्रोग्रामिंग के साथ सोएंगे तो हमारा नेक्स्ट डे सही हो सकता है, और हम अपने माइंड को प्रोग्रामिंग करना समझ लेना चाहिए। और इसका असर होता है, अगर ये मान लेते हैं तो फिर अगले दिन आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। और मैं सोचता हूँ हमारे दोस्त जो नए हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज है कि आप एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये काम करती है या नहीं, तो ट्राई करके देखें। नेहा सक्सेना हमारे साथ फेसबुक पे जुड़े हैं। नेहा का प्रश्न है, हाउ कैन आई हेल्प माई ब्रदर, ही इज इन टू डीप डिप्रेशन एंड हिज डिप्रेशन इज कॉजिंग डिप्रेशन टू माई मदर ऑल्सो। मैं सोचता हूँ प्रवीण देवी, ये एक ऐसा प्रश्न है जो बहुत सारे लोग आजकल डील कर रहे हैं, यहाँ तक कि WHO ने भी इस चीज के ऊपर गाइडलाइंस इश्यू किए हैं और रिसेंटली कहा है कि बी काइंड टू योर माइंड। और बहुत सारे लोग ये जो लॉकडाउन और इत्यादि चीजों में डिप्रेशन और मेंटल इलनेसेस में बहुत ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे में परिवार में अगर आपका एक सदस्य है, और नेहा पूछते हैं कि उनका भाई डिप्रेशन में है, जिसकी वजह से उनकी मदर को भी डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो वो कैसे मदद कर सकती हैं, ये पूछती हैं।
हम लोगों ने ये देखा है कि हमारे पास हमारे जो सेंटर्स हैं, वो सेंटर्स पर कई भाई बहनें डिप्रेशन को लेकर के आते हैं। कोई आते हैं जो कहेंगे हमें बिल्कुल नींद नहीं आती है, सारी रात रात हम सो नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। तो हम उनको ये राय देते हैं कि आप अगर समय निकाल करके हमारा राजयोग का मेडिटेशन कोर्स करो, ताकि उस कोर्स के आधार से आप अपने आप को मदद कर सकते हो। और नेहा बेन, आप भी अपने भाई और मदर को ये डिप्रेशन की बीमारी से बचाना चाहते हो, तो मैं यही सजेशन दूंगी आपको कि आप हमारे जो भी सेंटर्स हैं, वो सेंटर्स अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन आप हमारा 7 दिन का जो लेसन होते हैं, 7 लेसन्स होते हैं, वो जरूर अटेंड करो। और दूसरा, घर के अंदर भी एक खुशी का एटमॉस्फेयर बना के रखो। और तीसरा, आप अपने घर में, हर एक के घर में टेलीविजन होता है, लेकिन टेलीविजन के अंदर भी ऐसी चैनल आप सिलेक्ट करो और वो देखो, क्योंकि आजकल टेलीविजन में भी वही बातें आती हैं जो हमारे जीवन से घटित हुई होती हैं, और वो हमारे जो दुख की बातें हैं जो हमने स्टोर करके रखी हुई हैं, वो जब हम स्क्रीन पर देखते हैं तो और हमारा घाव ताजा हो जाता है। इसलिए टेलीविजन भी ऐसी चीजों के लिए यूज करो जो आपके मन को मोटिवेट करे, क्योंकि नहीं तो क्या होता है कि हम ऐसी चीजें देखते रहते हैं जिसके आधार से हम डिमोटिवेट होते जाते हैं और घर में वापस वो एटमॉस्फेयर बनता जाता है। तो आप जरूर इन्हों को मदद करिए नेहा बेन, कि आप हमारे आध्यात्मिक जो भी सेंटर्स नजदीक हैं ब्रह्मा कुमारी इसके, वहां जाकर के ये 7 दिन का कोर्स करिए, या तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, हमारे कई ऑनलाइन कोर्सेज भी चालू हैं। और ये प्रैक्टिस आप अपने घर में शुरू करिए और भाई और मदर को मदद करिए, क्योंकि मेडिटेशन से मैं जरूर कहूंगी कि हम डिप्रेशन को खत्म कर सकते, क्योंकि डिप्रेशन आने का कारण भी हमारे संकल्प ही है। अगर हम बार 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 नेगेटिव संकल्पों को क्रिएट करते जाते हैं तो जैसा संकल्प वैसी मेरी स्थिति बनती है, वैसा ही मेरा जीवन बनता है। तो आप इनसे उठने के लिए मेडिटेशन को जरूर एक माध्यम बनाइए, ताकि आप डिप्रेशन से भाई और मदर को निकालने में बहुत बड़ी मदद करेंगी।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। मैं ये सोचता हूँ कि हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कैसे किसी की मदद कर सकते हैं। नेचुरली डिप्रेशन एक ऐसी चीज है, इसके लिए बहुत लोगों की मदद की जरूरत पड़ती है। और जब फैमिली मेंबर्स ने, जैसा आपने कहा, ये आवश्यक है कि हम घर में खुशी का वातावरण बनाए रखें, तो यही हमारा सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है। लोग प्रोफेशनल हेल्प सीक आउट कर सकते हैं, जैसे आपने कहा कि आश्रम पे भी कोर्सेज वगैरह होते हैं, वो किया जा सकता है। काउंसलर से चीजें पूछी जा सकती हैं, मेडिटेशन हेल्प कर सकता है। बट आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, आई थिंक हम में से सब लोगों को ये पता है कि हम लोगों को खुशी दे सकते हैं, खुशियां बांट सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है जो सभी लोग यूज कर सकते हैं। एक बहुत सुंदर फीडबैक है जो हमारे फ्रेंड रत्ना जी हमारे साथ शेयर करते हैं और फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं। रत्ना घटघटे बोलते हैं, ओम शांति, मैं कोंकण में 4 मंथ से लॉकडाउन में अकेली हूँ, नहीं जा पा रही हूँ मुंबई। मैं लास्ट 2 मंथ से शिवानी दीदी का और आपकी बातें सुनती हूँ, तो मेरे में बहुत फर्क हुआ। अकेली हूँ बट महसूस नहीं होता।
कितनी अच्छी बात है कि अकेले होते हुए भी महसूस न होवे, क्योंकि हमें अपने आप को बिजी करने का एक तरीका आना चाहिए कि लॉकडाउन के टाइम पर यदि मैं अपने आप को बिजी कर सकती हूँ तो इनसे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हम भी लॉकडाउन में लॉक हो गए हैं, लेकिन हम अपने आप को बिजी करते हैं, अपने आप को मोटिवेट करते हैं और हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी अग्रसर होते रहते हैं। तो बहुत अच्छा है कि आपने ये टाइम का फायदा उठाया बेन।
थैंक यू सो मच रत्ना जी ये फीडबैक शेयर करने के लिए। वो कहते हैं वो 60 इयर्स की एज के हैं और जब उन्होंने अपने टाइम को ऐसे इफेक्टिवली यूज किया है। जो हमारे यंग दोस्त हैं उनके पास तो और भी बहुत सारे ऑप्शन होंगे, बहुत क्रिएटिवली वो बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं, अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज ले आ सकते हैं। तो जो लोगों ने अभी तक भी कोशिश नहीं की, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास समय है। और शायद ये जो परिस्थिति आई है इसमें गिफ्ट मिला है, वो है टाइम का ही गिफ्ट मिला है हर किसी को। तो उस टाइम को
टाइम हमारे लिए बहुत बड़ा खजाना है, और इस समय यदि हमने टाइम को यूज किया तो आगे चलकर के समय भी हमें मदद करने के लिए बंधाईमान हो जाएगा। तो समय एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है हमारे लिए। कहा भी जाता है कि चला गया धन वापस आ सकता है, चली गई तंदुरुस्ती वापस आ सकती है, लेकिन चला गया समय वापस नहीं आ सकता है। तो ये संजोग ने हमें समय दिया है, तो ये समय का पूरा पूरा फायदा उठा करके हम अपनी आत्मा की जागृति करें, हेल्थ को भी ठीक कर सकते हैं ये समय में, क्योंकि वैसे आप बहुत बिजी रहते हो अपने शेड्यूल में, लेकिन ये जो समय मिला है अपने लिए मिला है, ये समझ करके अपने परिवार को यूनाइटेड करने के लिए मिला हुआ है, ये समझ करके हम पूरा पूरा समय का फायदा उठाएं। तो आप सभी कर सकते हो ना समय का फायदा, क्योंकि ये समय बहुत बहुत वैल्यूएबल है। बाकी जीवन के अंदर हम देखते हैं कि हमारे स्वभाव में बहुत परिवर्तन आता है, और ये समय ऐसा नाजुक है कि ये लॉकडाउन के टाइम पर आप अपने कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और अपने हिडन संस्कारों को हम इमर्ज कर लेते हैं। कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, और गुस्सा हम किसके ऊपर करते हैं? जब हम सामने वाले को गुस्सा करते हैं तो क्या मुझे शांति मिलती है? कभी नहीं मिलेगी। तो आप अपनी आप पर रहम करें, क्योंकि मेरा स्वभाव यदि गुस्सा करने का है तो मैं अपने आप को जैसे कि श्रापित करती हूँ। तो अपने आप पर रहम करना, अपने आप को मदद करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि गुस्सा एक अग्नि है। आपने यदि आपका हाथ एक बार अग्नि के अंदर लग गया तो एक बार आपका हाथ जल गया, क्या दोबारा आप अपने हाथ को जलाओगे? दोबारा आप अपने हाथ को अग्नि में डालोगे? तो वहां हम कितना सावधानी बरतते हैं कि हमें दोबारा अग्नि का शेक भी नहीं लगना चाहिए। और हम एक बार गुस्सा किया, उसकी रिजल्ट हमें मालूम पड़ गई। बार बार यदि गुस्सा करते हैं तो ऐसे ही है जैसे कि समझ होते हुए भी हम ना समझ हो जाते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि आध्यात्मिकता में वो ताकत है कि हम अपने आप पर अपने मन को संयम सिखा सकते हैं, क्योंकि ये समय ऐसा है कि आध्यात्मिक उन्नति हम कर सकते हैं, अपने आप को बहुत ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। और आजकल हम देखते हैं कि YouTube पर भी इतनी सारी बातें आ रही हैं कि आप एक बात को भी अपने जीवन में प्रैक्टिकल फॉर्म देंगे तो वो प्रैक्टिकल फॉर्म आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और ट्राई करो कि एक वीक के लिए आपको गुस्सा नहीं करना है, एक वीक के लिए। यदि गुस्सा आता है तो कोई कहता है एक से सौ काउंट करो, कोई कहता है ठंडा पानी पियो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पोस्टपोन करो। यदि आपको गुस्सा आता है तो आप उसको अगले दिन पर पोस्टपोन करो। बाय द टाइम आपका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाएगा कि कल कर लूंगी गुस्सा, कल उनसे बात कर लूंगी, तब तक मेरी अग्नि जो प्रज्वलित हुई थी वो थोड़ी शांत हो जाएंगी। क्योंकि जब हम गुस्सा करते हैं न सिर्फ खुद जलते हैं लेकिन दूसरों को भी जलाते हैं। और कहने में क्या आता है, हम कहते हैं कि पांच भूत हैं, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार, ये भूत हैं, और गुस्सा भी एक भूत है। और अगर भूत की प्रवेशता मेरे में हो गई तो सामने वाला डरेगा ना। तो इसीलिए अच्छा है पोस्टपोन करने की विधि को हम यूज करें, ताकि हम अपने आप पर रहम कर सकते हैं। अपना संबंध गुस्से के कारण बिगड़ता है, क्योंकि यदि मैं उसकी रिजल्ट को देखती हूँ, किसी को मैं खराब शब्द अपशब्द गुस्से वाले बोल से मैं किसी को जवाब देती हूँ तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? वो रिजल्ट को सामने रख करके हम अपनी वाणी को व्यवहार में लाएं। वही बात यदि मुझे कहनी है तो मैं शांति से भी कह सकती हूँ। तो कौन सी भाषा का प्रयोग मुझे करना है, कौन से शब्दों का प्रयोग मुझे करना है, वो चयन मुझे खुद करना है, वो सिलेक्शन मेरे हाथ में है, वो चॉइस मेरे हाथ में है। तो मुझे कौन सी बात को चॉइस करना है, किस आधार से मुझे व्यवहार में इंटरेक्शन में आना है, वो मेरे ऊपर आधारित है। तो जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, और ये जीवन को कैसे मुझे सार्थक करना है। मैं एक बात आप सभी को कहना चाहूंगी कि हमारा जीवन जो है वो क्रिकेट के खेल, और वो क्रिकेट के खेल में खिलाड़ी होता है, प्लेयर्स होते हैं, लेकिन वो खेल जैसे हम खेल रहे हैं, जो भी खिलाड़ी खेल में उतरते हैं वो बहुत खुली दिल से, बहुत उमंग उत्साह से खेल करता है, और लेकिन जब आउट हो जाता है तो वो मैदान छोड़कर के चला जाता है। तो इस नाटक के अंदर हम सब प्लेयर्स हैं, और हम सब प्लेयर्स, हमें पता नहीं है कि कौन सा श्वास आखिरी श्वास होगा, जैसे वो प्लेयर को नहीं पता होता कि कौन सा बॉल आखिरी बॉल होगा और उसको मैदान छोड़ना पड़ेगा, आउट हो जाएगा, तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी कौन सा श्वास आखिरी श्वास होगा वो हमें नहीं पता है। तो जब भी हम प्लेग्राउंड पर हैं, तो क्यों नहीं बहुत उमंग उत्साह से खेले, ताकि हमारे जीवन से अनेक आत्माओं को प्रेरणा मिले।
जी दीदी, आपने बहुत ही अच्छी बात ये समझाई और कहा कि ये जो टाइम बीत रहा है इसको हम इफेक्टिवली यूज करें, और जो चीजें हम कर सकते हैं उन चीजों को करने की जरूरत है, यहाँ पर पॉजिटिविटी लाने की जरूरत है और लाइफ के नए पर्सपेक्टिव्स को समझने की जरूरत है। हालांकि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है कि मैं और सवाल लूं, पर मेरे पास और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। मैं उन सभी फ्रेंड्स से अपोलोजाइज करना चाहता हूं कि मैं सारे प्रश्न नहीं ले पाऊंगा आज, हमारे पास 5 ही मिनट बाकी हैं, और जैसा आप सभी जानते हैं कि हम हर दिन एंड में ये 5 मिनट हमारे मास्टर ऑफ मेडिटेशन के साथ मेडिटेशन करेंगे, तो हम मेडिटेशन के लिए समय यूटिलाइज करेंगे। ओरिजिनल राजयोग जो ब्रह्मा कुमारी के रेगुलर भाई बहने करते हैं, वह क्या अभ्यास करते हैं और कॉमन संकल्प क्या होते हैं जो इस अभ्यास में करना चाहिए वो बताएं, ऐसा नरेंद्र जी हमारे साथ यूट्यूब से पूछते हैं। और मैं कहता हूं नरेंद्र जी, बस हम थोड़ी देर में मेडिटेशन करेंगे और दीदी जी हमें मेडिटेशन कराएंगे भी, तो उनके साथ हम ये मेडिटेशन करेंगे, तो आपको एक्सपीरियंस करने का भी मौका मिलेगा। आज जिन्हें भी दोस्तों ने हमें ये सवाल पूछे, बहुत सारे लोगों ने अपने फीडबैक्स लिखे, अप्रिसिएशन दिया, कमेंट्स दिए, शाउट आउट्स दिए, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी दोस्तों का धन्यवाद जो आपने ये चीजें पूछी और शेयर किया हमारे साथ, और आप सभी की तरफ से मैं प्रवीणा दीदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि जो आज हमारे साथ आए और ब्रह्मा कुमारी इसके मुख्यालय माउंट आबू से सीधे हमारे साथ जुड़े इस प्रोग्राम में। तो दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए और इतना विजडम शेयर करने के लिए।
मैं भी आप सभी सुनने वालों का और आपका भी श्रीनिधि भाई बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमें इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए मौका दिया। थैंक यू
दीदी। मैं अभी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगले 3-4 मिनट के लिए आप मेडिटेशन हमें गाइड करें, हमारे थॉट्स को हम कैसे गाइड करते हुए मेडिटेट करें, और आपके साथ बैठकर हम ये मेडिटेशन एक्सपीरियंस भी करना चाहेंगे।
ओम शांति। चारों तरफ से हम अपना बुद्धि योग हटा करके फोकस करें, अपने आप से पूछें कि मैं कौन हूं, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, मैं प्रकृति के मध्य में विराजमान इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। संकल्पों की रचना करने वाली, अनुभव करने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति हूं। मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योतिर्मय बिंदु स्वरूप हूं। इस शरीर के अंदर भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान हूं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति मेरा स्वधर्म है, शांति मेरा स्वभाव है। मैं अपने शांति की किरणें चारों ओर फैला रही हूं, जैसे सूर्य की किरणें चारों ओर फैलती हैं, वैसे मेरे शांति के प्रकंपन में चारों ओर फैला रही हूं। कितनी न शांति अनुभव हो रही है। शांति का अनुभव कर रही हूं। मैं आत्मा एक प्रकाश पुंज हूं। मैं संकल्प के माध्यम से ये अनुभव कर रही हूं। शांति का एहसास कर रही हूं। मैं आत्मा संकल्पों की गति से, संकल्पों के आधार से मैं सूर्य चंद्र के पार जहां मेरा घर है, शांति का धाम है, वहां मैं पहुंच रही हूं। परम शांति, एक अलौकिक शांति का एहसास हो रहा है। शांति धाम मुझ आत्मा का घर है, जहां अखंड प्रकाश है, वहां शांति के धाम में मेरा पिता परमात्मा भी विराजमान है, जो शांति के सागर है, जिससे मैं शांति का अनुभव कर रही हूं। शांति की शक्ति को एकाग्र कर मैं वापस रिटर्न हो रही हूं इस शरीर की दुनिया में। मैं आत्मा अपने चारों ओर शांति के वाइब्रेशंस बना के रखूं, शांति की अनुभूति सदा ही करती रहूं। मेरे विचार शांत होते जा रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।